व अशरकत अल अर्ध बिनूरी रब्बिहा, और चमक उठेगी जमीन अपने रब के नूर से। आज तो ये जमीन किससे चमक रही है? सूरज के चमकने से चमक रही है। उस दिन जमीन अपने रब के नूर से चमकेगी। आप देखिए ना, अल्लाह ताला ने जो शिकवा किया ना कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, वो बिल्कुल सही है। तुम्हें पता क्या है अल्लाह की कुदरत का? भी ये सारी चीजें अल्लाह की कुदरत की कितनी बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह की बड़ाई को पहचानने के लिए ये काफी आया। आप समझे तो सही, ये कोई आसान मामला है? कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला के नूर से कैसे, उसका नूर कैसे होगा कि सारी जमीन उसके नूर से चमक रही होगी? हम नहीं जान सकते। उसकी मुट्ठी कैसी है हम नहीं जान सकते। कैसे उसकी मुट्ठी में सब आ जाएगा, कैसे आसमान लिपट जाएंगे? आसमानों का हाल ये होगा। जब कोई बड़ा लगने लगता है, जिसकी बात हम मानने के लिए दौड़ते जाते हैं, उसने कह दिया तो मैं उसकी बात कैसे टालूं? वो नाराज हो जाएगी। तो तब पता नहीं चलता कि अल्लाह कितना बड़ा है। ये पूरी जमीन उसकी मुट्ठी में, और जमीन पे रहने वाले हमारे लिए इतने बड़े हो जाते। जमीन भी कुछ नहीं है अल्लाह के सामने, और हमारे सामने जमीन के छोटे छोटे बोने इंसान कितने बड़े बन जाते। अल्लाह अकबर। तो सोचें फिर, कौन बड़ा है, अल्लाह या ये जमीन पे रहने वाले? क्या इंसान के सामने उस दिन आएगा जिस वक्त वो खड़ा होगा और सामने देखेगा अपने के क्या मनाजिर है, जब किसी को किसी का होश नहीं होगा और अफरा तफरी पड़ी होगी? पहला नुक्ता तो सिर्फ उनके ऊपर आएगा जो कि ईमान जरा भी जिनके दिल में ना, लेकिन दूसरा नुक्ता में तो सारे ही खड़े होंगे ना। बास बादल मौत का नुक्ता, सब खड़े हो जाएंगे। क्या पैगंबर और क्या वली और क्या काफिर और क्या मोमिन, और जो भी है, जो भी है, सब खड़े में। अल्लाह अकबर। अब वो मैदान है जिसके अंदर, जिसकी आज तक हम बातें पढ़ते रहे, अब उस मैदान की कहानी है कि उस मैदान में होगा क्या। अब वो मंजर सामने आ रहा है जिसका तसव्वुर ही नहीं कभी इंसान कर सकता। जब पढ़ना है ना, वो बिल्कुल अलग है उससे जो कि, ये तो एक समझ लें, हमारी जितनी अकल समझ, जितनी इमेजिनेशन है उसके मुताबिक हम थोड़ा बहुत इमेजिन कर लेते, लेकिन जो रियलिटी है उसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये अल्लाह की ताकतें, अल्लाह सुबहाना तआला के उस दिन नूर, वो सब चीजें, वो जमीन और वो उस वक्त लोग, कि हर इंसान को सिर्फ इतनी जगह मिली होगी जितनी उसके दो कदम रखने की जगह, तो किस तरह से ठुसे में होंगे लोग, कितना हजूम होगा वहां पे। हम तो जरा से रश से ही घबरा जाते हैं। और अब सब खड़े हैं, वउदी अल किताब, और किताब रख दी जाएगी। और अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरह कहाँ पे, वउदी अल किताब फतर मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, मुजरिम देख रहे होंगे उसके अंदर और डर रहे होंगे उससे। उसके यहाँ पे मुजरिम कहा गया, काफिर नहीं कहा गया। मुजरिम कौन, किसके मुजरिम, कौन से मुल्क के मुजरिम, कौन से क्रिमिनल्स हैं ये? ये अल्लाह के मुजरिम है, इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उसके हुक्मों को तोड़ा। अब वो देख रहे हैं किताब को, अपनी किताब को, कोई और नहीं किताब है, किसी और की इनके ऊपर नहीं डाली गई, और उन वो डर रहे हैं इससे। अपने ही अमल देख के डर रहे हैं, ये तो तुम्हारे अपने ही अमल है। वजी अबिन नबी नवशुहदा, और लाया जाएगा नबियों को भी और शहीदों को, यानी गवाहों को भी लाया जाएगा। जब अदालत कायम होती है तो ऐसे ही होता है ना, एक मुद्दई होता है, एक वो होता है जिसके ऊपर एक ने मुकदमा किया हुआ है, एक वो होता है जिसके ऊपर मुकदमा किया गया है, गवाह भी लाए जाते हैं, उसमें जज भी होता है, ठीक है, पुलिस भी खड़ी होती है, मुजरिम को जो ही सजा सुनाई जाए तो उसको पकड़ लेंगे। तो एक अदालत कायम हो रही है जिसमें हम सब ने खड़े होना है और हमारे ऊपर केस चलना है। केस जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारा क्या अमल है। इसीलिए तो दिल इतने दहल रहे होंगे, इसीलिए तो कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, इसीलिए तो इंसानों को इतना पसीना होगा कि वो अपने पसीने में डूबे जा रहे होंगे, इसीलिए तो इंसान कांप रहे होंगे कि अब हमारे साथ होगा क्या। मर कोई सकता नहीं कि चलो मर ही जाए इस टेंशन के अंदर, हार्ट अटैक हो जाए किसी को, कोई गिर पड़े, कोई बेहोश ही हो जाए इतनी टेंशन से या गर्मी से, हाँ, या कोई भाग ही सके कहीं तो इससे कहीं जान छूट जाए। आज तो जान छूट ही नहीं सकती, आज तो आ गए हो यहां पे तो अब तो सब भुगतना ही पड़ेगा। इंसान सोचता भी है ना तो दिल दहल जाता है। हाय वो उस दिन खड़ा होना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि हालात ही बदल गए ना। वो सब जो दुनिया में देखते थे वो सब तो कहीं चला गया, घर हैं, गाड़ियां हैं, ऐश हैं, आराम है, हुकूमत हमारी मुट्ठी के अंदर है, 4-10 लोगों को हम जानते हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं। मेरा फलां जानने वाला, एक फोन कॉल करूं तो वो भागा आ जाएगा, एक फोन कॉल करूं तो वो आ जाएगा, कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो अस्पताल है, ईआर है, पुलिस है, सब चीजें हैं। ये सब चीजें तो सब खत्म हो गई, सब ही खत्म हो गया, मंजर ही बदल गया। और अब खड़े हुए हैं और आ रहे हैं, वो आएंगे तो सारे ही, मगर यहां पर नबियों और शुहदा की बात क्यों गई, उनको अहमियत देने के लिए ये हाजिर किए जाएंगे। ये वो हाजिरी का दिन है, वकूदिया बईना हो बिल हक, और फैसला कर दिया जाएगा इनके दरम्यान हक से, और हमला युदलामून, और वो कुछ जुल्म नहीं किए जाएंगे। जब हाजिर हो जाएंगे गवाह भी हाजिरी के लिए, गवाह कौन है इंसान के लिए, उसके गवाह अंबिया भी गवाही देंगे कि इसने माना मेरी दावत को या नहीं माना, मेरी उम्मत ने क्या जवाब दिया। इसी तरह उम्मत मुहम्मद भी गवाह होगी जो पिछली उम्मतों में गवाही दे देगी कि ए अल्लाह इनके पैगंबरों ने पैगाम इनको पहुंचा दिया था। ये जमीन भी गवाही देगी कि मेरे ऊपर कहाँ कहाँ किसने क्या क्या बदामालियां की या क्या क्या नेकियां की। और तो और इंसान के अपने आज़ा भी गवाही देंगे कि इसने मेरे साथ ये किया। फरिश्ते भी गवाह होंगे, हर एक के साथ एक साइक और एक शहीद होगा, यानी एक उसको लेकर आने वाला, पकड़ के लाने वाला, और एक उसका गवाह, और उसका आमालनामा तो उसकी गवाही है। ये नहीं कि अल्लाह ताला को पता नहीं है कि किसने क्या अमल किया हुआ इसलिए गवाह लाए जा रहे हैं। ये इसलिए है कि जब इंसाफ कायम हो तो इंसाफ नजर भी आए, साबित भी हो जाए। देखिए ना, इंसाफ कायम होता है, बाज दफा पता ही नहीं चलता इंसाफ हुआ भी है कि नहीं। कोई कह सकता नहीं जी इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन इंसाफ साबित हो जाए, दिखे सबको कि इंसाफ ही हुआ, वरना अल्लाह ताला को तो सब पता है, वो तो बगैर गवाह, उसको क्या गवाहों की जरूरत है, बगैर गवाहों के और बगैर उसके वो आज भी सुना सकता है कि किसने क्या करना है या क्या किस तक क्या नतीजा है। तो अब वो दिन होगा कि पता चलेगा कि कैसे जिंदगी गुजार के आए, किसको बड़ा बना के आए, किस गैरुल्ला की मानते रहे। इंसान हैरान और परेशान है इसलिए कि अब अपने अमाल देख रहा है, अब कुछ बोलने की तो ताकत नहीं, अदालत तो लग चुकी है, गवाह भी मौजूद है, किताब भी मौजूद है, इनकार करे तो करे कैसे। यहाँ पे तो बड़ा आसान है ना, कहते नहीं जी मैंने तो नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, अब साबित करो, आप करते रहो सारी जिंदगी, उसने मानना ही नहीं। वहां पे नहीं कोई कर सकता कि मैंने नहीं किया, हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। अब सोच के भी इंसान, तसव्वुर करके भी देखे ना, तो जो इंसाफ के साथ फैसला होगा, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, तो फिर उस वक्त जिस वक्त गवाह भी हैं, हमारी किताबें भी हैं, अंबिया भी मौजूद हैं सबके सामने, उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। जब आदम से लेकर कयामत तक के इंसान मौजूद हैं इस भीड़ में, कहीं तो हम भी हैं ना, तो मैं उस वक्त कहाँ हूंगी, मेरे लिए कौन होगा, मुझे कौन बचाने वाला होगा, मेरे लिए कौन खड़ा होने वाला होगा। मेरी कौन वकालत करेगा? अल्लाह अकबर, इंसानों का जम्मे गफीर है, इतने इंसान है फिर भी हर इंसान अकेला, इतने हजूम में भी पहचान के भी नहीं पहचानते, सब अजनबी होकर। अब तब दिल गम से फटेगा नहीं, दुनिया में हम किसी बीमार की बीमार पुरसी क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते कि हमारी बीमार पुरसी कर से वो ठीक हो जाएगा, उसको सपोर्ट मिल जाती है, उसकी बीमारी तो नहीं हम दूर कर सकते, हम सिर्फ उसको दिलासा देने के लिए, कि उससे उसको हौसला मिल जाता है, ढारस बनती है। वहां पे तो कोई ढारस बताने वाला भी नहीं कि कोई हौसला ही दे दे, कोई हाल ही पूछ ले, किसी को हाल सुना ही दे, क्या इस वक्त दिल पे गुजर रही है वो ही बयान कर दे। इसीलिए कहा गया बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। यो मैया जानू मिलता नशीबा, जिस दिन वो दिन जो बच्चे को बूढ़ा कर दे, जिस दिन सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी उसी दिन सब सपोर्ट खत्म हो जाएगी। इंसान अब मुंतजर है अपने फैसले का, और उसको पता है कि हक के साथ फैसला होना, आज सिफारिशें नहीं चलनी, आज रिश्वतें नहीं चलनी, आज कॉन्टेक्ट्स नहीं चलने, आज या तो आग है या बाग है, या जन्नत है या जहन्नम है, या खुशी है या गम है, या सुख है या दुख है, या रोना है और या हंसना है, बस एक ही बात होगी। अल्लाह हु अकबर। और नूर से जब जब हमने कहा ना कि जमीन अल्लाह के नूर से चमक उठेगी, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला खुद तशरीफ ले आएगा। और जब सूरह उसमें फजर में हम पढ़ते हैं ना, वजह और रब्बु कवल मलक सफन सफा, अल्लाह ताला भी तशरीफ ले आएगा और उसके फरिश्ते भी साफ दर साफ जमा हो जाएंगे। फरिश्ते तो सफे बांध लेंगे, चारों तरफ फरिश्ते हैं, उन्होंने घेरा डाला हुआ। अल्लाह ताला नजूल फरमाएगा, उसके अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते थामे हुए होंगे और दरबार लग जाएगा। अभी जितना इंसान रो ले तो उसके फिर भी कुछ काम आ सकता है, उस दिन का तो रोना भी काम नहीं आना, उस दिन तो रोने से भी फायदा नहीं मिलेगा कि आप रोएं और चीखें या जो मर्जी करें। अल्लाह अकबर। तो अब ये जो इंसान दुनिया में सोचता है ना, इन इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा, मई आमल मिसकाला जर्रतिन खैरन यरा व मई आमल मिसकाला जर्रतिन शर्रन यरा। इंसान तो जर्रे जर्रे के अमल को देख लेगा, जर्रे के बराबर खैर भी देख लेगा, जर्रे के बराबर शर भी, इतनी इतनी डिटेल के अंदर बातें नजर आएंगी आमालनामे में लिखी सबकी सबकी। अल्लाह फरमाएगा आज आ गए ना हमारे पास, जैसे कि हमने तुम्हें पहली दफा पैदा किया था, नंगे बदन नंगे पैर, हर एक इंसान को अपनी पड़ी होगी। ये जो आज हम जब भी कुछ आयत पढ़ते हैं या सोचते हैं ना, तो हमें दूसरों की बातें याद आने शुरू होती, फलां ऐसी है फलां ऐसी है, लेकिन उस दिन फलां फलां कुछ नहीं है, देखा वो तो ऐसी है, नहीं उस दिन उसका होश नहीं होगा, सिर्फ अपना होगा, अपनी जिंदगी के ऊपर ही इंसान सोच रहा होगा कि क्या कर दिया, किधर गंवा दी, किधर रोल दी, ये जिंदगी बर्बाद कर दी, उसी के ऊपर पछतावे होंगे, कोई हाथों को चबा रहा होगा कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों ना अल्लाह रसूल की इताअत, कितनी बेवकूफ हो जाएंगी ना ये सारी चीजें जिन जिनके ऊपर आज हमने तकिया किया, इनको आज हम कुछ समझते, कितना याद आएगा ना ये सारा टाइम जो बर्बाद कर दिया आज, जो फजूल गवा दिया। तो चार चीट तो सामने होगी ना, गवा भी आ गए, तो इंसान कुछ कह के बच नहीं सकता कि मैं क्या करता, मेरे साथ तो ऐसा नहीं, वो फुली रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी उसने किया। अल्लाह ताला ने गवाह बुला के हुज्जत तमाम कर देनी है। तो अब फैसला हो जाएगा, वफियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत वा हुवा आलम बिमा यफअलून, और पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने अमल की। और वो ज्यादा जानता है, सारे अफ़ाल को अल्लाह ताला खुद ज्यादा जानता है। और इंसान को खुद भी अपने अमल का पता है, हर नफ्स को उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, यानी किसी की कमी नहीं की जाएगी, हक नहीं मारा जाएगा, जितनी कमाई करके आना उतना ही दिया जाएगा। मसला तो ये है कि कमाई की हो तो फिर है ना। वो सीख लदीना कफरू, और सीखा, अब सीखा का लफ्ज मैंने जैसे आपको बताया ना, लेकर जाए जाएंगे, साका या सीखो, सीखा माजी है, ठीक है, माजी, माजी का सीगा कैसे आ गया, अभी तो फ्यूचर के अंदर होनी है ये सब कुछ। इस तरह से आया कि ये बात इस कदर डेफिनेटली हो जाने वाली है, इतनी ज्यादा यकीनी है कि जैसे माजी की बात हो, जैसे मैं कहूं कि मैं कल मॉल गई थी, तो ये तो बात जाहिर है यकीनी है, लेकिन अगर मैं कहूं मैंने कल मॉल जाना है, तो हो सकता है, पता नहीं, हालांकि मेरा पूरा इरादा है मैंने जाना है और मैं कह रही हूँ डेफिनेटली मैं जाऊंगी, लेकिन हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए, मौसम खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, मॉल बंद हो जाए, कुछ भी रास्ते बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं चांस होता है कि मैं ना जा सकूं। लेकिन जो चीज माजी में हो चुकी ना, वो तो बिल्कुल 100% है कि वो हो चुकी है, चुके तो इसलिए वो तो डन है। इस तरह से इट्स डन, सीखा, इसलिए माजी का लफ्ज लाया गया कि समझ लो हो चुका, ये इतना ये बात डेफिनेट है। अल्लाह अकबर, किसी भूल में ना रहना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, हमें क्या पता। तो सीखा का माना हांकने का नहीं है असल में, इसका माना है ले जाने का, किसी को लेके जाना। अगर चूंकि मुजरिमों के साथ ऐसा सलूक होगा कि उनको ले जाया जो जाएगा ना, वो ऐसे कि बहुत ही जलील करके, घसीट के, उनको बहुत बेइज्जती के साथ धक्के मार मार के जिस तरह से ले जाया जाएगा, तो इसलिए हांकने का लफ्ज यहाँ पे करा दे, जैसे जानवरों को नहीं पीछे से डंडा मारते हैं तो उनको चलाते हैं। वसीक अल्लदीन कफरू इला जहन्नम जुमरा, और जुमरा इस सूरत का नाम भी सूरह जुमर इसी से है। जुमरा का मतलब होता है वैसे आवाज, लफ्जी माना, और जब ग्रो भी बहुत सारे जमा हो जाते हैं लोग, तो फिर भी आवाज होती है। तो अब जुमरा, जुमर ग्रो, इसके अंदर ग्रोहों के अंदर लोगों को ले जाया जाएगा, हांका जाएगा, जलील करके, धक्के मार मार के आगे किया जाएगा, किस तरफ, जहन्नुम की तरफ। जब लोग अल्लाह ताला के सामने हाजिर हुए, तब तो अकेले अकेले हाजिर हुए थे, लेकिन जब जहन्नुम की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो देखे ग्रोहों में लेके जाया जा रहा है। कौन लेके जा रहे हैं? सीख का मजहूल है ना, कौन लेके जा रहे हैं? फरिश्ते उनको लेके जा रहे हैं। अब वो जाने पे मजबूर है, ऐसे नहीं कि जिधर चाहे चले जाए, भाग जाए यहां से, अब हमारे खिलाफ फैसला आ गया तो अब हम क्या करें। तो एक तो सीका से पता चल गया कि ये बात इतनी सच है कि जैसे हो चुकी है, इसको समझ लो। दूसरी ये, वो ग्रोहों के अंदर ले जाएंगे जाएंगे। और जुमर का एक मतलब मजामीर से आवाज, जो मैंने आपको बताया ना, मजामीर भी आवाज होती, यानी आवाज होगी, यानी इतना चीख रहे होंगे, रो रहे होंगे, दुहाइयां दे रहे होंगे, खामोशी से नहीं जा रहे होंगे कि चुप चुप कर करके चलते जाए, और वो पीछे से धकेल रहे, वो जब उनको घसीटेंगे या बालों से पकड़ के खींचेंगे, तो वो तो चीखेंगे ही ना, और या जिनको सामने जहन्नुम नजर आ रही है, तो वो क्या खुशी से जाएंगे या खामोशी से जाएंगे? तो ये वो सीन बताया गया कि जो उनको जहन्नुम की तरफ ले जाने वाला सीन है ना, वो कैसा सीन है, और वो ही इतना दहशतनाक है कि उस वक्त उनको ऊपर क्या गुजर रही होगी कि जुम आ रहा, उनकी चीखें होंगी, पुकार होगी, दुहाई होंगी, रोने धोने होंगे। अल्लाह अकबर। हत्ता यहाँ तक कि इधा जा हुआ कि जब वो पहुंच जाएंगे उसको, यानी जहन्नुम तक पहुंच जाएंगे, तो फुतिहत अबवाबुहा, तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे, यानी अब पहले से दरवाजे नहीं खुले हुए थे, अब दरवाजे खोले जाएंगे, बिल्कुल जैसे जेल वगैरह के दरवाजे खुले थोड़ी रहते, वो तो बंद होते हैं ना प्रिजन के, तो जिस वक्त मुजरिम को लाया जाता है, अंदर डालना होता है, तो फिर वो दरवाजा खोल कर डाल के फिर बंद कर देते। इस तरह उनको दरवाजे पहले से बंद है और वो दरवाजे खोले जाएंगे और इनको अंदर झोंका जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार वकाल अल्लाहुम खज़नतुहा, और उनसे कहेंगे उसके दारोगे इन जहन्नमियों से कहेंगे, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए तुम में से, यतलून अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जो तुम्हारे ऊपर तिलावत करते, तुम्हारे रब की आयात को पढ़ के सुनाते। वो अब इनको कह रहे हैं इनको जलील करने के लिए, अब रिश्तों को तो पता है कि जाहिर है आए थे, लेकिन देखते के ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा ना गलत करता है ना कुछ, तो माँ एक साथ उसे कान खेज रही होती है और कहती है मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, मना नहीं किया था, ये मतलब नहीं कि उसने पूछ रही है उससे कि मना किया था कि नहीं, ये कह रही है उसको सरजनिश करने के लिए, उसको एहसास दिलाने के लिए, तो यहाँ पे उनकी हसरत बढ़ाने के लिए। और फरिश्ते भी देखें सोच रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं कि इनके पास तो फरिश्ते वो अंबिया आए थे और इनको अल्लाह ताला ने इतनी अकल भी दी हुई है, फिर भी ये यहाँ पे एंड अप हो गए। तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई बताने वाला नहीं तुम्हें आया था, जिसने तुम्हारे तुम्हें इस वयुनजीरूना कुम लिका योमी कुम हादा, जो तुम्हें आके खबरदार करता बताता कि भाई आज की मुलाकात के बारे में, कि तुमने अल्लाह से मुलाकात करनी है, तुमने अल्लाह से मिलना है, उसके आगे खड़े होना है, तुम्हें नहीं कोई बताने वाला आया था, किसी ने नहीं तुम्हें खौफ दिलाया, किसी ने नहीं तुम्हें जहन्नुम का बताया, किसी ने नहीं तुम्हें अल्लाह के आगे जवाबदेही का बताया, आयात रब्बी को जो तुम्हारे पास तिलावत करता, इसका मतलब है कि ये आयात जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है, यही दिलों को बदलती है, यही जिंदगियों को बदलती है, यही जहन्नुम से रोक का बाइस बनेगी कि इंसान जहन्नुम से बच जाए, उसके इंतजाम करना है तो ये आयात बताएंगी कि कैसे है। तभी तो वो कह रहे हैं क्या आया नहीं था जो, क्योंकि अगर आया था तो फिर कैसे हो गया था तुम यहाँ पे एंड अप हो गए। नजीर जो बताने वाला जो रसूल था वो नजीर बन के आया था ना, और उसने तुम्हें बताया नहीं, अब खुद सोचें हमारे पास क्या अल्लाह की आयात पहुंच गई है, क्या हमारे सामने पड़ी गई है, क्या हमें इस दिन की मुलाकात का पता है, इसके ऊपर यकीन है, फिर तो कभी भी जहन्नुम तक नहीं जाना चाहिए, इसके बचाव का इंतजाम हमें करना है फिर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान इन आयात पे यकीन भी रखे, इस मुलाकात का पता भी हो, इस अंजाम का भी पता चल गया, ये सीन हमारे सामने है कि क्या उनकी हालत हो रही है, फिर भी इंसान वो ही जिंदगी गुजारता रहे। वो उनसे कह रहे हैं, वो उनको एक तरह से डांट रहे हैं, जैसे वहां पे भी सूरह मुल्क में भी आता है लम यातिकुम नदीर आलू भला, तो वो भी वहां पे कहेंगे कि हाँ आया था, लेकिन हमने क्या, हमने कहा नहीं नहीं तुम मेरी ऐसी बातें, कुछ नहीं अल्लाह की तरफ से आया, तुम तो खुद ही खुली गुमराही में हो, तुम तो खुद ही भटके हुए हो, लॉस्ट पीपल, हमने उनकी बातों पर यकीन ही नहीं किया। तो जब रसूल आता है वो तो वो पैगाम लेकर आता है जिसमें जहन्नुम से बचने का रास्ता है, तरीका है, अब इंसान अगर उसके ऊपर यकीन ना करे या ऐसा यकीन करे कि बस जुबान से तो किया यकीन, लेकिन यकीन की बात कर दी लेकिन अब उसकी जिंदगी की डायरेक्शन ही ना बदली, तो रसूल ने तो अपना काम कर दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी कि तुमने वाकई इस जहन्नुम से बचना है या नहीं। तो वो उनको डांट रहे हैं कि है नादानो, ए गुमराह गुमराह होके जहन्नुम में आने वाले बदबख्तों, तुम्हारे पास क्या रसूल नहीं आए थे? तुम्हें किसी ने खबर नहीं दी थी या किसी ने तुम्हें वॉर्न नहीं किया था? अल्लाह अकबर। अब देख लेना कि ये कितनी बड़ी हुज्जत है हमारे खिलाफ कि अगर कुरान ये आयात आ जाए और इनके ऊपर फिर भी अमल ना किया जाए तो यही खिलाफ हुज्जत बन जाएंगी कि ये आई थी। वो कहते हैं भला क्यों नहीं आई थी, फिर क्यों नहीं अपने शऊर से काम लिया, फिर क्यों नहीं माना, तुम्हें तो अकल थी ना। अगर इस किताब के रास्ते पे चलते तो इसका मतलब यहां पे नहीं पहुंचना था। ये बात इंसान को आज समझ नहीं आती। वो कहता है नहीं मुझसे नहीं अमल होता, नहीं मुझसे नहीं कुरान को समझा जाता, यही तो नुस्खा था। और किसी ने तुम्हें डराया नहीं, वॉर्न नहीं किया क़यामत के दिन से? नहीं, वो तो हमारे जैसे तो ऐसी बातों से ही बहुत भागते हैं, इसलिए क्योंकि हमें तो डर लग जाता है, ये तो डराने वाली बातें हैं। अब पूरा का पूरा ग्रो कह रहा है, कोई उनमें से ये नहीं कह रहा नहीं 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 मैं तो इतना इनोसेंट था, मेरे पास तो कोई पहुंचा ही नहीं, मेरे पास तो कोई बात ही नहीं आई। सारे कह रहे हैं भला, सब इतराफ करेंगे। हाँ बताया था, कल तक तो बहाने करते थे ना, बहुत बातें आती थी ना, अब मान रहे हैं कि हाँ बताया था। लेकिन हक कत कलिमतुल अदाब याल काफिरीन, लेकिन हक हो गई बात अजाब की काफरों पर। अब हो सकता है कि ये उन्हीं का कलाम हो और हो सकता है ये अल्लाह ताला की बात है कि इनके ऊपर अजाब का कलिमा हक हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि लोग होंगे ऐसे जो नहीं मानेंगे। लअमलअन्ना जहन्नम, जब मैं भर दूंगा जहन्नम को किससे, जिन और इनसे, वो सब जो शैतान की पैरवी करे उसके पीछे चले उनसे भर दूंगी। तो अल्लाह ताला की ये बात सच हो गई, वाकई ऐसे होने थे लोग जिन्होंने यही करना। हमारे पास नहीं टाइम, हमारे पास नहीं ये, अमल तो हमसे होता नहीं। अल्लाह, उस दिन इंसान क्या बहाना कर सकेगा, हमें किसी ने नहीं बताया था, ये तो कह ही नहीं सकेगा, किसी ने नहीं समझाया था, ये भी नहीं कह सकेगा, हमें पता ही नहीं था एक क़यामत का दिन, ये भी नहीं कह सकेगा, अपने ऊपर ही मलामत करेगा ना, हमने नहीं परवाह की, हमने अपनी जिंदगी को किधर गंवा दिया। फेला दखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, कहा जाएगा दाखिल हो जाओ दरवाजों में जहन्नम के, हमेशा रहने वाले हैं इसमें। यानी जहन्नम के भी दरवाजे हैं ना, 7 दरवाजे, हर दरवाजे के लिए एक जुमर होगा, एक गरोह का। कोई वो लोग हैं जो मुशरिक हैं, कोई काफिर हैं, कोई मुनाफिक हैं, कोई मुसलमान हैं लेकिन फासिको फाजिर हैं, कोई किस तरह के, कोई किस तरह के, तो उसके मुताबिक ही वो दरवाजों में जाएंगे। कभी समस वल मुतकब्बिरीन, तो कितना बुरा ठिकाना है तकबर करने वालों का। इन्होंने किस चीज से तकबर किया? अल्लाह की बात मानने से ना, कि अपनी बस मेरी अकल इतनी बड़ी है कि अल्लाह की बात के आगे मैंने अपनी अकल को ही ज्यादा समझ लिया, अपनी सोच, अपनी मर्जी, अपना आप, अल्लाह के हुक्म को तो कुछ समझा नहीं, ये भी तकबर है, और अपनी बात को बड़ा कर लिया। इतनी बड़ी थी मेरी मर्जी, इतनी बड़ी थी मेरी बात कि अल्लाह की बात को पीछे कर दिया और अपनी बात को आगे कर दिया, तो ये फिर मुतकब्बिरीन का ठिकाना है। मुतकब्बर होता क्या, हक सामने आ जाए और उसको ना मानना और लोगों को हकीर समझना कि ये क्या चीज है, और हक सामने आ गया पता है कि ये बात इस तरह से है, और जो लोग कहते हैं ना हमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं हमें तो सब कुछ पता है, उन्होंने अपने खिलाफ खुद ही हुज्जत कायम कर ली, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें सब कुछ पता है फिर भी माननी नहीं, तो तुम कयामत के दिन क्या कहोगे कि हमें तो सब कुछ पता था ना, भला हमें सब कुछ पता है, हमें कोई ना कुछ बताए, वो पता है तो फिर हिसाब है। तो ये तकब्बुर यही होता है कि पता है फिर भी समझना कि नहीं मुझे ज्यादा पता है, अल्लाह की बात के आगे मुझे ज्यादा पता है, हक सामने आ जाए फिर भी उसको रिजेक्ट करना। अब वो देखिए जब उनसे कहा जाएगा दाखिल हो जा, अब दरवाजा खोला गया है जहन्नुम का, और इनको इनके सामने जो सीन आएगा खुद सोचे, अभी तो पहले सीन नहीं था, दरवाजा खुला है तो आगे क्या सीन है कि लोग अंदर हैं जहन्नुम के, और जो उनकी चीखों पुकार और जो उनका मदद को पुकारना और जो उनका जलना, वो कैफियत देख के कितनी अजियतनाक कैफियत है कि वो कैफियत देख के किसी को चैन ना आए। हम दुनिया में कोई किसी की तकलीफ की बात सुन लेते हैं ना तो सिर्फ सुन के या उनकी कोई वीडियो देख के ही रात को नींद नहीं आती, इतनी बेचैनी होती, इतना हम रोते हैं कि हमारे अपने सारे मजे खत्म हो जाते हैं। और खुद सोचें कि जहन्नमियों का सिर्फ सीन देख के अपने सामने उनकी क्या है हालत होगी जब दरवाजा खोला जाएगा, हर एक तकलीफ में। लेकिन यहाँ पे कोई फायर फाइटर नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई इलाज नहीं है, यहाँ पे कोई दवा नहीं है। जब भी मैं कोई पेन किलर खाने लगती हूँ, कोई भी दवाई, यही हमेशा सोचती हूँ कि देखो ये यहाँ पे हम कितनी जल्दी से खा लेते हैं ना, जरा सी दर्द नहीं हुई तो फौरन गोली निकाली और खा ली, जरा सा बुखार हुआ और फौरन के भाई बुखार डाउन हो जाए बस। अल्लाह उस दिन की कौन सी पेन किलर है, उस दिन के अजाब से बचने के लिए कौन सी वो गोली है, क्योंकि खा लेंगे तो निजात मिल जाए, उस दिन किसको पुकारेंगे, यहाँ पे तो जरा बीमार होते तो हम पड़ जाते हैं बिस्तर पर, सारा घर खदमत कर रहा है, कौन पूछेगा वहां। ऐसे नहीं असलाफ की मारे नींदे उड़ जाती नहीं ये जहन्नुम के जिक्र पे, ऐसे नहीं वो इतना रोते थे कि वो समझते थे ना इन बातों को, एक बुजुर्ग थे तो उनकी बेटी कहने लगी कि आप सारी रात कड़बटे बदलते रहते क्यों, आप सोते क्यों नहीं, कहते जहन्नुम की आग मुझे सोने नहीं देती, इतना एहसास कोई छोटी बात नहीं है। और फिर ये किस वजह से, देखिए एक जिस्मानी तो अजाब होगा, एक जहनी टॉर्चर इतना होगा ना, जहनी अजियत किस बात पे होगी कि हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी को क्यों आग लगा दी, अब वापसी भी नहीं है, अपनी उन हठधर्मियों में कितना गुस्सा आएगा, खाम खा की मुझे क्या जरूरत थी कि मैं यही करती रहती, मैं क्यों इन गुनाहों में पड़ी रही, मैंने क्यों नहीं एहसास किया, मैंने क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मैंने क्यों नहीं सोचा जबकि मुझे पता था मुझे बताया जाता था, मैंने क्यों नहीं सुना, तब ये एहसास होगा, तब इतने ज्यादा शिद्दत से एहसास होगा कि इंसान उस तकलीफ में भी होगा अंदर से भी जल रहा है और बाहर से भी जल रहा है, कि अंदर ये जलन है कि क्यों ऐसा कर दी, छोटा सा दुनिया का ही नुकसान हो जाए, देखिए हम कितना जलते कुड़ते रहते हैं उसके बाद कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों ये हो गया, ना ऐसा करता, ये ना होता तो वो ना होता, वहां पे किस तरह की हसरत होगी, ये पता होते भी मैंने ये कर लिया, राजगुनाह तो कुछ लगते ही नहीं ना इनके, तो अच्छे तो वैसे ही माफ हो जाने हैं, तो फिर मुझे क्या जरूरत है परवाह करने की, सारी माफिया ही माफिया है मेरे लिए, अभी पता नहीं आगे कि कितने गुनाहों की माफी मिली किसकी नहीं मिली, जब इंसान अल्लाह की रहमत की तरफ देखे हाँ वो बेशक बहुत माफ करने वाला है, लेकिन साथ ये भी सोचे अगर उसे पकड़ लिया तो तब मेरा क्या बनेगा, ये भी सोचना है। उम्मीद भी होनी चाहिए, खौफ भी होना चाहिए। असीक अल्लदीन तकौ रब्बहुम मिनल जन्नति जुमारा, और ले जाए जाएंगे वो लोग। और वो लोग ले जाए जाएंगे जिन्होंने अपने रब का तकवा इख्तियार किया। इलल जन्नत इस उमर, जन्नत की तरफ ग्रो दर ग्रो, उनके भी ग्रो होंगे, वो भी ग्रोहों में ले जाए जा रहे होंगे। ये कौन लोग हैं जो मुत्तकी हैं, जिन बेचारों ने अपनी जिंदगी इस तरह गुजारी कि गुनाहों से बच बच के, ये दलेर नहीं हुए गुनाहों पे। वो भी उनके भी ग्रो है। अब ये ग्रो बंदियां जो है इस बिना पे भी हो सकती है कि इंसान के अव्वल कैसे थे। एक तो ये भी ग्रो बंदी है ना कि कोई साबिकून है, कोई असाबल यमीन है, ये भी ग्रो बंदी है कि उनमें भी देखे कोई लोग बड़े नमाजी, कोई को बड़े तहज्जुद गुजार, कोई बड़े आ, 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 तकवा। तो एक ओवरऑल चीज है ना जिसमें सारी बातें आ जाती, लेकिन फिर उसके बाद हर एक की अपनी एक कोई स्पेशल क्वालिटी होती है। तकवा का तो सबके अंदर ही तकवा है, लेकिन फिर स्पेशल क्वालिटी क्या है, कोई बहुत सदका करता है, कोई बहुत लोगों के साथ एहसान का रवैया रखता है, तो उसके मुताबिक उनके ग्रो होंगे। हत्ता इजा जा उहा, हत्ता के जब वो आ जाएंगे उसके पास, वफूती हतब वाबुआ। अब देखिए वहां पे वा का लफ्ज नहीं है, यहाँ पे वा का है, और ये वाव हालिया अगर हम करें कि इस हाल में के खोल दिए जाएंगे उनके लिए दरवाजे, इस हाल में के खोले जाएंगे, यानी पहले से खोल दिए जाएंगे, खोले हुए होंगे इस हाल में के। जब ये पहुंचेंगे तो इनके लिए ये नहीं होंगे कि जन्नत के दरवाजे बंद थे। जन्नत के कितने दरवाजे, 8, और जिसके जिक्र आता है कि बाबु सदका है, बाबु रैयान है, बाबु सलात है, बाबु जिहाद है। एक एक बाब का नाम आपको पता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला भी है। जो बंदे इसको कसरत से पढ़ते हैं ना, वो इस दरवाजे से जाएंगे। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि वाकई अल्लाह के सुपुर्द खुद को कर देना कि हर जो चीज है ना, जो भी भलाई मिलनी है वो भी अल्लाह की तरफ से है, और जो भी चीज की जो भी शर को रोकने की कुव्वत है वो भी अल्लाह के पास ही है, और इसी तरह के जो भी मैं नेकी की मुझे तौफीक मिले वो भी अल्लाह की तरफ से है, और वो जो भी बुराई से मैं बच जाऊं वो भी अल्लाह की तरफ से कुव्वत है, मेरे अंदर नहीं है कोई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना मैं कोई भलाई पा सकता हूँ, ना मैं कोई सी बुराई से बच सकता हूँ, ना मुझे कोई खैर पहुंच सकती है, ना मैं किसी शर से बचने की ताकत रखता हूँ, सिर्फ अल्लाह के पास है। तो वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इतना बड़ा कर, मैं अपने इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह समझ के जो पढ़ने वाला है ना, वो खुद को अल्लाह के हाथों में दे देता है। मैं तो कोई हस्ती हूं ही नहीं, सब कुछ तो मेरा रब ही है, तो सारा संभालने वाला वो ही है, चाहे छोटी बात है चाहे बड़ी बात है, कोई भी खैर या शर की बात है, सब उसी के कब्जे कुदरत में। तो ये जन्नत का एक दरवाजा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का, तो जो बड़े फहम के साथ इस अकीदे के साथ इसको पढ़े, तो पहला ग्रो जो जन्नत में दाखिल होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके चेहरे ना 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे, इतने रोशन होंगे, और उनके जो उनके बाद वाला होगा, अच्छा इनके भी दिल ऐसे होंगे कि फरमाया कि एक के दिल की तरह, यानी इतको ही आपस में नफरतें कदूरतें कीने कुछ नहीं होगा, आपस में बड़ी मोहब्बत से रखते होंगे, और अकीदा भी सेम होगा, जब भी तो एक दिल है ना, एक जैसे दिल, एक के दिल की तरह होंगे, सेम होंगे। तो दूसरे जो ग्रो जाएगा वो उनके चेहरे सितारों की माने चमकते होंगे। सुभान अल्लाह। तो जैसे जहन्नमी ग्रो दर ग्रो गए, इसी तरह जन्नत वाले भी ग्रो दर ग्रो जा रहे हैं। और सीका का माना यहाँ पे ले जाए जाएंगे, यानी मतलब है कि जो जन्नत वाले होंगे ना, उनको जब ले जाया जाएगा, उनके लिए भी वही लफ्ज आया, लेकिन जब उनको ले जाया जाएगा तो इतनी इज्जत और कराम से ले जाया जाएगा कि आप देखते हैं ना कि जैसे बड़े बड़े बादशाह और वो होते हैं, उनके पीछे पीछे लोग होते हैं, पीछे पीछे चल रहे थे, वो आगे आगे चल रहे थे। जब जहन्नवियों को असल में सीखा होता है पीछे से धक्का देना ना, तो पीछे से चलाना, तो जब जहन्नवियों की बात आई तो पीछे से धक्के दे रहे होंगे उनको और ऐसे, और जब इनकी बात आई तो पीछे से चलाना, यानी जैसे आप देखते हैं वो बादशाहों के पीछे सिक्योरिटी गार्ड और इतना और वो सब कुछ पीछे होते, आगे नहीं उनके कोई चल रहा था, वो खुद आगे आगे चल रहे होते। तो ये भी ले जाए जाएंगे पूरे प्रोटोकॉल के साथ, फरिश्ते इनको इस तरह से लेकर जा रहे हैं, ये भी इनकी इज्जत अफजाई है ना, इनके आगे आगे नहीं कोई चलेगा, पीछे पीछे इनको रास्ता दिखाते भी लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर दरवाजे तक जब ये पहुंचते हैं तो इनके लिए दरवाजे भी खुले हुए हैं, और नेकियों के लिहाज से अपने अपने ये उसमें जाएंगे। अब बाबर रैयान में कौन जाएगा, जो रोजे बहुत रखता है, जैसे अब रमजान के रोजे रखे, फिर शव्वाल के 6 रोजे रखे, वो ऐसे ही है जैसे पूरे साल के उसने रोजे रख लिए। तो इतना कितना यानी आसान सा अमल है, लेकिन आपको कहाँ तक पहुंचा सकता है। इसी तरह बाबू सलात में वो जो नमाज पे खास खुशू से पढ़ते थे, एक्स्ट्रा नमाजें पढ़ते थे, नमाज में उनका दिल लगा रहता था, फिर और भी इसी तरह जिस दरवाजे से जिसका होगा। तो अब क्यों पहले से खोले जा चुके हैं, ताकि इनको इंतजार भी ना करना पड़े, जरा भी दिक्कत ना हो। आप देखिए ना, इंतजार भी बड़ा तकलीफ दे हो जाता है। अब आप चाहे एयरपोर्ट पे आपको बैठना, आपको पता है मेरे पास टिकट भी है, सब कुछ है, जहाज अभी है, लेकिन आपको जो वो लाउंज में बैठना, इंतजार करना पड़ता है ना, वो भी जहमत होती है एक, तो उनको जरा देर का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए पहले से दरवाजे खुले होंगे। जानते हैं आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि जो जब लोग पुल सिरात से पार करके जब आ जाएंगे, तो वहां पे जब वो पहुंचेंगे आगे मतलब जन्नत तक, तो उससे वहां पे एक और पुल होगा उससे पहले ना, और लोग यहाँ पे भी इंतजार कर रहे खड़े होंगे, जैसे हशर में लोग हिसाब किताब के लिए इंतजार में खड़े थे ना, और कभी किसी के पास जाते थे, कभी किसी पैगंबर के पास, तो फिर उनसे कहते थे आप सिफारिश करें, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से फिर हिसाब किताब शुरू होता है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि यहाँ पे भी जो जन्नती लोग खड़े होंगे ना, वो अब अभी जन्नत का दरवाजा नहीं खुला, तो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। फिर लोग आदम अलैहि सलाम, इब्राहिम अलैहि सलाम, नूह अलैहि सलाम, जैसे मूसा अलैहि सलाम, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, ईसा अलैहि सलाम, इन सब के पास जाएंगे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम के पास जाएंगे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम जन्नत का दरवाजा खुलवाएंगे, और आपसे पहले ये दरवाजा किसी के लिए नहीं खुला होगा, तो फर्स्ट वन जो खुलवाने वाले होंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलाम होंगे, और आपके बाद फिर आप सरासर दरवाजा खटखटाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा आप कौन है, और आप वहाँ का जो दारोगा होगा रिजवान, वो कहेगा आपसे आपके लिए सबसे पहले खोला था, आपसे पहले किसी के लिए नहीं खोला गया ये दरवाजा, तो आपसे सर ने फरमाया मैं पहला हूंगा जो इस दरवाजे को खटखटाऊंगा। तो ये आप सल्लम की शान है कि आपकी सिफारिश से या आपकी आपके खटखटाने या आपके जाने से ये दरवाजा खुलेगा, और उसके बाद फिर ये खुला होगा, फिर सारे चलते जाएंगे, फिर नहीं किसी के लिए बंद होना, फिर सब चलते जाएंगे, अब सबके लिए एंट्री है, और अब वेलकम करने के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें भी इस जन्नत का बासी बनाए। वो काला लहुम खजनतुहा, तो जैसे दुनिया के अंदर जैसे जहाज से कोई उतरता है, हम तो उसको ही देखते हैं ना कि भाई कोई बादशाह यहाँ आ रहे होते हैं, तो सामने खड़े होते हैं लाइन दर लाइन, लोग उनको वेलकम करने के लिए आए होते हैं, लेने के लिए आए होते हैं। तो अब इंसान अपनी उस जगह पे पहुंच गया जहां से वो निकाला गया था, आदम अलैहि सलाम निकाले गए थे ना जन्नत, ये वो जगह है जहां पे अब वापिस इंसान पहुंच रहा है, अब वो खड़े हुए हैं उनके इस्तकबाल करने के लिए, फरिश्ते, तो वकाल लहुम खजनतुहा, उसके दरबान उसके दारोगे कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर। किस चीज से सलामती हो? अब हमारे सलाम तो ऐसे ही हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं हम समझते, बस ऐसे ही एक समझते, ये नहीं जानते कि ये एक दुआ है। सलामती हो तुम पर, क्या सलामती, किस चीज से सलामती? ये हर किस्म के गम से, हर किस्म की परेशानी से, अब नहीं कोई परेशानी आनी उससे सलामती, कोई बीमारी नहीं आनी, कोई मौत नहीं आनी, कोई रंज गम, कोई फिक्र, कोई तकलीफ, कुछ कोई चीज ही नहीं तुम्हें छुएगी। सलामती सलामती, सलामुन अलैकुम तिब तुम, वो कहते हैं सलामती हो तुम पर, बड़े अच्छे रहे तुम, तिब तुम, खुशहाल हुए तुम। यानी जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कि आप देखते हैं वो स्पोर्ट्स वाले जो होते हैं, जब रेस लगाते हैं उसके बाद फिनिश लाइन पे जो पहले पहुंच जाता है, या जो भी कोई एथलीट्स होते हैं वो गेम जीत जाते हैं, तो उसके बाद कैसे सब भागे आते हैं और उनको थपकी देते हैं, पीछे थपकी देते हैं ऐसे कमर के ऊपर, और उनको शाबाशी दे रहे होते हैं, बहुत अच्छा किया तुमने, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वो उनको इस तरह से, यानी तिब तुम बहुत अच्छे रहे, बड़ा अच्छा तुमने किया, तुमने बहुत अच्छे काम किए थे, यानी एक तरह से उनको बड़ा प्यार कर रहे हैं, अच्छे रहे भाई तुमने तो बड़ा अच्छा किया, पीठ ठोंक रहे हैं उनकी, अल्लाह अकबर, तो शाबाशी दे रहे हैं उनको, कितनी बड़ी बात होगी ना उस वक्त। अब दुनिया में कोई शाबाशी दे ना दे आपको नेकी के काम पे, लोग चाहे डिस्करेज करें, लोग चाहे बातें सुनाएं, देखिए वहां पे फरिश्ते शाबाशियां देंगे, तुमने इतने अच्छे काम किए, तुम्हारी कितनी अच्छी मेहनत थी, तुमने बहुत हिम्मत से काम लिया, सोचें ये कहा जा रहा हो, सोच के भी कितनी खुशी होती है ना। तो वो इतने खुश होंगे इस बात पे, इतने खुश होंगे कि अगर मौत होती ना तो खुशी से ही मर जाते, मौत नहीं है तो फिर अब वो, लेकिन इतनी उनको खुशी होगी। जहन्नमियों को भी इतना गम होगा ना जब उनसे उनको भी दाखिल किया जाएगा जहन्नम में, कि अगर मौत होती तो वो मारी जाते, इसी तरह ये इतने खुश होंगे। तो थोड़ी सी मेहनत दुनिया में इन्होंने की, पर देखो उनको क्या मिल गया, खुशहाल तुम में ना, खुशहाल पाकीज़ा खुश रहो, जैसे आप सल्लम की हदीस है ना, तू बाले गुराबा, अजनबियों के लिए कोई खबरी हो, फदखुलूहा खालिदीन, बस दाखिल हो जाओ इसमें, अब नहीं किसी ने तुम्हें निकालना, अब हमेशा रहोगे यहाँ पे। साथ ही ये खुशखबरी भी दे दी, फिक्र ना करो, अब नहीं कहीं जाना, अब नहीं कोई मुश्किलें, अब नहीं कोई मुसीबतें, अब नहीं कोई ताने, अब नहीं कोई जहन्नुम का खौफ, हिसाब किताब भी गुजर गया, पुल सिरात भी गुजर गया, जहन्नुम से भी गुजर गई, सब गुजर गया, अब हमेशा के लिए यहाँ पे रहो, ये वक्ती नहीं है। وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا, तो वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, खुद सोचे, अब जरा देर के लिए तसव्वुर करेंगे, मैं वो हूं कि जो जन्नत में दाखिल हो गई और मुझे ये कहा जा रहा है, तो फौरन क्या जुबान से निकलेगा, मैं जन्नत में एंटर हो रही हूँ, जन्नत के अंदर, और मेरे मुझे ये खुशखबरी दी जा रही है, तो मैं मेरे क्या जज्बात होंगे उस वक्त, मैं क्या कहूंगी। वाकई इंसान सोचता है ना, यही कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इस काबिल भी नहीं थी कि मेरे रब ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह लजी सदका ना वादा, वो जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, ये ईमान ला के साले अमल करोगे तो तुम यहाँ पहुंचोगे, तो अल्लाह ने अपना वादा सच किया, उसके तो सारे ही वादे सच्चे हैं, लेकिन जन्नती वहां पहुंच के अल्लाह की तारीफ में ये कहेंगे, और देखिए वो ये नहीं कहेंगे मैंने तो बड़े अच्छे काम किए थे, बड़ी मेहनत की, हाँ, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी थी, मुझे तो बड़ी बातें सुन के भी, मैं तो बड़ी दीन पे चलती रही थी, जैसे दुनिया में हमें अपने कारनामे या लोगों को बार बार बताते हैं, वो ये नहीं कहेंगे मेरा कमाल था, हालांकि उनको वो कह रहे हैं तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बड़ा अच्छा किया है, वो खुद नहीं कह रहे कि हाँ, हमने बहुत अच्छा किया, नहीं वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारा शुक्र सारी तारीफ तो अल्लाह की है, ये सरासर उसी की रहमत है, उसी का इनाम है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे अगर अल्लाह ना हमें तौफीक देता। तो दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह का ही कलिमा कहना चाहिए जब भी नेकी की तौफीक मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम कुछ भी वाकई नहीं कर सकते। ये भी तकब्बुर होता है कि इंसान अपने इल्म या अपने अमल पे बड़ा फूला ना समाए और कहे कि हाँ जी मेरे ही मेरे कारनामे हैं। हम तो सिर्फ ये अगर क्लास भी अगर ले रहे हैं ना तो भी इसके ऊपर भी ना कभी ये फूल कर, हाँ जी मैं तो बस इस तरह के उसमें भी क्लास देती, मैं तो उसके लिए वक्त निकालती हूँ, नहीं ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो मेरे अल्लाह का करम है मेरे ऊपर, उसकी करम नवाजी है, उसका ही शुक्र है, उसकी तारीफ है इस पे कि जिसने मुझे बिठा दिया यहाँ। वरना कई लोगों के पास और के पास बहुत वक्त है लेकिन वो कहाँ कहाँ उसको गुजार रहे हैं। तो याद रखें नेक लोगों की, जन्नती लोगों की ये सिफत है कि वो हर हाल में अल्लाह ही की तारीफ करते हैं। सूरह मोमिनून में नहीं आता कि जब वो खर्च करते हैं तो खर्च करते भी उनके दिल लरसते रहते, क्यों? ताकि पता नहीं अल्लाह ताला मैंने ये खर्च किया तो है लेकिन पता नहीं अल्लाह इसको कबूल कर ले, पता नहीं इसमें कोई रियाकारी ना आ गई हो, कोई हराम लुकमा ना इसमें हो, कोई ऐसी चीज ना हो गई हो कि ये अमल जो है जाया हो जाए, क्योंकि अल्लाह तो मुत्तकीन से ही कबूल करता है, मैं तो पता नहीं मुत्तकी हूं कि नहीं, इतना वो डरते रहते हैं दुनिया में। फिर वो औरसना अर्द, और फिर वो बारिश बना दिया हमने उनको जमीन का, ये वो जमीन है जिस बारिश के लिए, बारिश होता है ना बाप की जो मसल होती है जायदाद उसका वारिस उसका बच्चा बनता है, तो आदम अलैहि सलाम जो हमारे बाप थे जो जमाह से निकाले गए उनकी विरासत वापिस अब इंसान को मिल गई कि अभी इंसान वारिस बन गया उसका, सुभान अल्लाह। और दूसरा इसका मतलब ये है कि जो चीज चीज का वारिस होता है फिर कोई रोक टोक नहीं होती उसके लिए, फिर वो जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल करे। और तीसरा इसका मतलब यह है कि जन्नत में बहुत सी ऐसी जगह भी होंगी जो उनके लिए थी जो जहन्नुम में चले गए, अगर वो भी नेक अमाल करते तो ये जन्नतें उनको मिलती। अल्लाह ताला ने हर एक का ठिकाना जन्नत में भी रखा और जहन्नुम में भी, कोई चाहे जन्नत का विन कर ले चाहे जहन्नुम को अपने लिए कर ले, अगर वो ईमान लाते तो यहाँ पे होते, अगर वो नेक अमल करते तो यहाँ होते, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो अब क्या है उनके लिए, अब उनके लिए जहन्नुम है और ये तो जगह खाली रह गई तो अल्लाह ताला ने इनको दे दी। तो न तबव्वा मिनल जन्नति हैसु नशा, तो हमें अल्लाह ताला ने इस जमीन का वारिस बना दिया, हम जगह बना सकते हैं जन्नत में जहां हम चाहें, यानी जिधर चाहो रहो, ये नहीं कि दूसरों की जन्नत में जाकर कब्जे करके बैठ जाओ बल्कि अपनी जन्नत में जिधर चाहो आप जाके रहो। अब जन्नत एक एक बंदे की जन्नत सोचे, अदना जन्नती की जन्नत भी इतनी सी हो इतनी बड़ी होगी कि दुनिया और 10 दुनियाएं बना लो, तो पूरी दुनिया में अगर हमें कहें जहां मर्जी आप जाके रहना शुरू कर दो, मतलब पूरी दुनिया तुम्हारी है, तो ये एक दुनिया तो क्या 10 ऐसी दुनियाएं अदना जन्नती की हैं, तो आला की क्या बात होगी, तो जहां चाहे रहेगा। अल्लाह फनेमा अजरुल आमिलीन, तो बेशक कितना अच्छा है अजर अमल करने वालों का, अल्लाह ताला ने फरमाया कितना अच्छा बदला है अल्लाह ताला ने जो इनको दिया है, कितनी अल्लाह ताला ने कदरदानी की है इनके अमल की। इससे पता चला कि जन्नत जो है वो इंसान की अमल की बुनियाद के ऊपर है, हम कहते हैं जन्नत अल्लाह की रहमत से है और यहाँ पे है नेम आजरुल आमिलीन, तो फिर क्या इसमें दोनों में क्या से फिर हम करें कि रहमत से मिलनी है कि अमल से मिलनी है, तो बात यह है कि इंसान अमल करेगा तो अल्लाह की रहमत को समझ लो वो आवाज देता है, अल्लाह की रहमत उसी के लिए है जो अमल करने वाला है, तो तब इंसान अमल करता है, उसका अमल तो छोटा सा होता है, फिर अल्लाह की रहमत उसको जन्नत में पहुंचा देती है, जो इसके अमल से तो बहुत आला है। लेकिन अमल तुम्हें करना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ बातों से जन्नत मिल जाए, शौक होने से जन्नत में, हमें बड़ा शौक है जन्नत में जाने, या बातें बनाने से, विशफुल थिंकिंग से जन्नत मिल जाए, जन्नत के ख्वाब देखने से जन्नत मिल जाए, इससे नहीं मिलती, अमल करना पड़ता है। और अमल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अमल के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, अमल के लिए खुद को थकाना पड़ेगा, अमल के लिए अपनी मर्जियों को दबाना पड़ेगा बाज दफा, अमल के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, अमल के लिए ये जो दिल चाहता है, मेरा दिल ये करता है, मेरा दिल वो करता है, इसको भी चुप कराना पड़ेगा कि दिल तू चुप करके बैठ जा, तो मैंने माननी है तो अल्लाह की, तो ये करके दिखाएंगे तो जन्नत है ना। ऐसे तो नहीं कि जन्नत बस बोलते जाएंगे हमें बड़ी पसंद है तो इसलिए हमने जाना है वहां। हम अक्सर ये कहते हैं हमारे यहाँ के, हम इसीलिए तो कुरान नहीं पढ़ते कि हमें अमल करना पड़ेगा, तो अमल अगर नहीं होगा तो जन्नत में तो जा ही नहीं सकते। कितना शैतान ने धोखा दिया हुआ कि अमल करना पड़ेगा, अमल नहीं हमने करना तो भी इसलिए हम पढ़ते ही नहीं है। तो जन्नत तो जगह उन्हीं की है जो अमल करके दिखाए, यही तो हमारा इम्तिहान है। और अमल में मेहनत और मुशक्कत के साथ जो काम किया जाए उसको अमल कहते हैं, जिसमें कोई मकसद हो, ठीक है, उसको अमल कहते हैं। और फेल क्या होता है, यहाँ पे फाइलीन नहीं कहा गया, फेल कोई भी काम, कोई भी हरकत, चाहे उसमें मेहनत है नहीं है, कुछ भी जो हो जाए बस वो फेल है, अमल ऐसा नहीं होता, जिसमें गोल भी हो और मेहनत भी हो। वतर अल मलाइकत हाफीन मिन हौल अल अर्श, और अब ये ड्रॉप सीन है, अब सारे फैसले हो चुके, जन्नती जन्नत में चले गए, वहां पे खुशियां मना रहे हैं। और वो अच्छा ये बात मैं भूल गई कि जब वो उनको ले जाया जा रहा था तो उनके लिए भी जुमरा का लफ्ज आया। आप अब बताएं कि यहाँ पे जुमरा क्यों है, यहाँ पे आवाज क्यों है, ग्रो तो है आवाज, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आवाज का मान, यानी जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और खुशी भी है तो उनकी भी खुशियां, चहचहाहट, उनकी आवाज एक होती है ना, अब सामने जन्नत नजर आ रही है, अब जन्नत में दाखिल होने लगे तो फिर खुशी होगी, तो उनकी खुशी के भी है ना, उनकी खुशी की भी ये एक आवाज होगी। तो अब जन्नती अपनी खुशियों के अंदर मगन है जन्नत के अंदर, और जहन्नमी अपने जल रहे हैं वहां पे, और फैसले हो चुके हैं, फाइनल सब हो गया, अब तुम देखोगे फरिश्तों को हाफीना मिन हौलिल अर्श, कि वो घेरा डाले हुए होंगे अर्श के आसपास। एक माना तो मिन का हम नहीं करेंगे और फिर हम कहेंगे हौलिल अर्श, अर्श के इर्द गिर्द, और अगर हम मिन को मिन तबीजिया कहें यानी बाज का माना इसका लें, तो फिर क्या माना बनता है, बाज अर्श के बाज हिस्से के आसपास घेरा डाले होंगे, क्योंकि उलमा कहते हैं कि अर्श को इतनी बड़ी मखलूक है, हालांकि फरिश्ते भी कोई कम नहीं है, इतने फरिश्ते हैं अल्लाह के जिनको हम सोच नहीं सकते कि कितने फरिश्ते हैं। बहुत दफा आपको ये हदीस बताई गई है कि कितने फरिश्ते अल्लाह के अर्श का बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं, जिनकी बारी दोबारा नहीं आती, और आसमान चरचरा रहा है, यहाँ पे कोई एक बालिश्त भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे कोई फरिश्ता ना हो, अल्लाह की इबादत में लगा हुआ। तो इतने फरिश्ते होने के बावजूद सारे अर्श का घेरा नहीं डाल सकते, लेकिन वो हलका बनाए हुए हैं अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो तस्बीह कर रहे होंगे अपने रब की हमद के साथ, अल्लाह अकबर, और तस्बीह की एक गूंज होगी, वो वैसे भी तस्बीह करते हैं लेकिन अब एक और तरह से अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं उसकी तस्बीह के साथ। वकुदिया बैनहुम बिलहक, और फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान हक के साथ, के सारों के साथ, अब हक के साथ फैसला हो चुका। आप देखिए पहले भी हक की बात आई और अब फिर हक की बात आई, कि हक के साथ फैसला हुआ, क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कयामत का दिन हक के साथ फैसले करने के लिए रखा है, दुनिया में बहुत सारे लोग जब ये क्वेश्चन करते हैं कि दुनिया में जुल्म क्यों हो रहा है, अल्लाह ताला फिर कहाँ है, फिर ये इनको क्यों नहीं पकड़ता, फिर मजलूम की आह को क्यों नहीं सुन रहा, फिर ऐसे इंसाफ क्यों नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो याद रखें ये दुनिया फैसलों की जगह नहीं है, अमल की जगह है, ये इम्तिहान की जगह है, नतीजे की जगह नहीं है। नतीजा उस दिन है, उस दिन जर्रा बराबर बिना किसी पे जुल्म होगा और हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। ये जुल्म दुनिया में इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसानों को फ्री हैंड दिया हुआ है दुनिया में, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जो उन्होंने करना है उसकी छूट दी हुई है, इसलिए हो रहा है। यहां पे अल्लाह ताला इस वक्त इंसाफ का मामला नहीं रख रहा। बाज दफा होता है कि किसी को अच्छाई मिल जाती है अच्छा करने पे दुनिया में भी, और जो गलत करने वाले उनको दुनिया में ही अल्लाह ताला अंजाम दिखा देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक को हर चीज मिल जाए। 99 के कातिल को, 100 के कातिल को यहाँ पे तो नहीं कोई सजा मिल सकती, उसको एक सजा मिल भी जाएगी तो वो भी हक नहीं होगी, वो भी इंसाफ नहीं होगी, वो एक ही दफा उसकी मौत आएगी, 100 मौतें नहीं उसको आ सकती यहाँ, क्योंकि वहां पे जो फैसले होंगे वो पूरे इंसाफ के साथ होंगे। तो ये बात याद रखी, जब आपसे कोई एतराज करे कि फिर अल्लाह कहाँ है, फिर क्यों नहीं है, तो आपको ये बात का जवाब आना चाहिए कि ये दुनिया फैसलों की जगह नहीं है कि यहाँ पे अल्लाह ताला फैसले करना शुरू हो जाएगा। इंसाफ तो तभी होगा ना जब फैसले होंगे कि भाई कौन हक पे है, कौन बातिल है, किसको सजा मिलनी चाहिए, किसको इनाम मिलना चाहिए, किसको किसके साथ क्या जुल्म हो रहा है। यहाँ पे इंसाफ की तवक्को ना करें, इंसाफ उस दिन है, तो उस दिन फैसले कर दिए जाएंगे उनके दरमियान हक के साथ। वकीला, और कह दिया जाएगा, ये कौन कह रहे होंगे, ये सब फरिश्तों की पुकार होगी, यानी एक नारा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो रब है जहानों का। एंड में जब ड्रॉप सीन होगा, जो एंड होगा डे ऑफ जजमेंट का, उसमें ये अल्लाह ही की बड़ाइयां और उसी की तारीफें बयान की जाएंगी, जब सब खत्म हो चुका, जब सब अपने अंजाम को पहुंच चुके, तब भी अल्लाह का कलमा ही बुलंद होगा। इस तरह इंसानियत का ये जो पूरा सिलसिला चला हुआ है आदम अलैहिस्सलाम से कयामत तक का, ये सारा अपने एंड को, जो क्लाइमेक्स को, जो अपनी पूरी उसके ऊपर पहुंच जाएगा ना, कि जहां पे उनका क्लोजर क्लोजर को पहुंच जाएगा, वो इस पे होगा। और इन सारे मराहिल से सोचें कि हमें गुजरना है, आप इन आयात के अंदर खुद को तलाश कीजिए, ये हमारा होमवर्क है, इन आयात में खुद को तलाश करें मैं कहाँ हूं। यही आयत थी जिसके बाद, जिसकी दलील दे के फतवा दिया गया था कि काबा के इर्द गिर्द सारी तरफ जमात से नमाज पढ़ी जा सकती है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ इमाम के पीछे ही हो सकते थे लोग और चारों तरफ नहीं होते थे काबे के। फिर उसके बाद हमने कहा इसी आयत से लेके कि देखो फरिश्ते भी इस तरह अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द ऐसे तस्बीह कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए और इन आयात को हमारे हक में हुज्जत बनाए, हमारे खिलाफ ना बनाए। अल्लाह ताला इस सूरत में हमने जितना तौहीद का सबक पढ़ा है, अल्लाह ताला इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और शिर्क के जर्रे बराबर चीज से भी हम सबको महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.